हरे कृष्ण। एकादशी के दिन पर हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। भगवान की भक्त की कथा में और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि भगवान के भक्त भी जो भी कार्य करते हैं वो भगवान के लिए ही करते हैं। तदीयानाम समर्चनम, जो भी भगवान से संबंधित है उन चीजों की चर्चा हम करेंगे तो हमें वही लाभ मिलेगा जो भगवान की चर्चा करने से हमें प्राप्त होगा। भगवान के भक्तों की चर्चा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। और अगर हम भगवान के भक्तों की चर्चा करते हैं तो भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से माता पिता जब देखते हैं कि लोग उनके बच्चे की प्रशंसा कर रहे हैं, बच्चे की गुणगान कर रहे हैं, बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, तो माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब भगवान के भक्तों की चर्चा हम करते हैं तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उनके बारे में कथा करते हैं तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन उनके भक्तों के बारे में कथा करते हैं तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए एकादशी के दिन ये प्रथा है सारे इस्कॉन मंदिरों में कि भगवान के भक्त श्रील प्रभुपाद के बारे में चर्चा हो। तो ये दसवां अध्याय है और इसका शीर्षक है आवश्यकता की यह महत्वपूर्ण घड़ी। ये अध्याय की शुरुआत श्रीमद् भागवत के नौवें स्कंद के नौवें खंड से है। विषय वस्तु को उपयुक्त भाषा में, विशेषकर एक विदेशी भाषा में प्रस्तुत करने की हमारी योग्यता सचमुच विफल रहेगी और उसको सही ढंग से प्रस्तुत करने के हमारे सच्चे प्रयत्नों के बावजूद हमारी भाषा में बहुत सी साहित्यिक त्रुटियां हो सकती हैं, किंतु हमें विश्वास है कि हमारी त्रुटियां कितनी भी क्यों न हो प्रस्तुत विषय वस्तु के गंभीर्य पर तब भी लोगों का ध्यान जाएगा और समाज के नेता उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह एक सच्चा प्रयत्न है सर्वशक्तिमान परमात्मा के वैभव के प्रकाशन का, जिसकी इस समय घोर आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम स्कंद नौवां खंड नौ से। भक्तिवेदांत स्वामी ने केशव मठ के कुछ भक्तों को साथ लेकर प्रचार के लिए आगरा, कानपुर, झांसी और दिल्ली की अल्पकालिक यात्रा की। फिर वे अपने स्थान वंशी गोपाल जी मंदिर को शीघ्र लौट आए। अब उन्हें अभय बाबू कोई नहीं कहता था। मित्रों के बीच भी वे स्वामी जी या महाराज हो गए थे। वे प्राय स्वामी भक्ति वेदांत जी, स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी आदि संबोधनों से पुकारे जाते। लोग तुरंत उन्हें साधु मानने लगे और सम्मान देने लगे। इतना होने पर भी उनकी मूलभूत समस्या क्यों थी। वे लिखना चाहते थे और अपने लिखे हुए को प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। तो यहां हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने जब संन्यास लिया तो अभी स्वामी जी या महाराज या ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जी ऐसे नामों से पुकारे जाते थे। पहले संन्यास लेने के पहले उनको लोग अभय बाबू पुकारा किया करते थे, लेकिन संन्यास लेने के बाद में लोग उनको ज्यादा सम्मान देने लगे। इसलिए हम देखते हैं कि ये संसार में लोग जब देखते हैं, खास करके भारतवर्ष में, कि किसी ने गहरे वस्त्र पहने हैं तो तुरंत सम्मान देते हैं, या जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति ने अपना जीवन भगवान की ओर समर्पित किया है तो तुरंत उसकी ओर वो ज्यादा सम्मान देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास लिया था। वो देख रहे थे कि मैं जब कृष्ण का संदेश लोगों को देने जा रहा हूं तो लोग इसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं संन्यास ले लूं तो फिर लोग जबरदस्ती मुझे उनको सम्मान देना ही पड़ेगा, और जब वो मुझे सम्मान देंगे मैं तो साक्षात श्री कृष्ण हूं, तो सम्मान देने का लाभ उनको होगा, और जो मैं बोल रहा हूं तुरंत उसको सुनेंगे ध्यान से। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी भी सोच रहे थे कि अभी समय आ रहा है, मुझे संन्यास लेना चाहिए ताकि लोग मेरी बात को सुनेंगे, लोग मुझे सम्मान देंगे। जब ये विचारधारा होती है भक्त की तो वो ये नहीं चाहता है कि सम्मान मुझे मिले। प्रभुपाद जी की ऐसी इच्छा नहीं थी कि लोग की सम्मान मुझे मिले, वो चाहते थे कि भगवान के संदेश को लोग ध्यान से सुने, और अगर मैं ऐसे आश्रम में प्रवेश करूं जिसको स्वाभाविकता से लोग सम्मान देते हैं तो मेरा कार्य और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने, जब उनके गुरु भाइयों ने उनसे कहा कि अभय बाबू अभी आपको संन्यास लेना चाहिए, तो फिर पहले हिचकिचाए, फिर बाद में सोचा कि हाँ, मेरे गुरु महाराज के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए संन्यास लेना बड़ा जरूरी है, और उस समय उन्होंने अपने गुरु भाई केशव महाराज जी से संन्यास लिया। उसके बाद तुरंत यहां देखते हैं कि लोगों का व्यवहार उनके प्रति बदल गया। उसके बाद में कोई उनको अभय बाबू नहीं पुकारता था, उनको फिर स्वामी जी, महाराज इत्यादि पुकारते थे। तो देखते हैं कि संन्यास लेने के पहले, इसको पूर्वाश्रम कहते हैं, तो एक बार कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है तो उसके पूर्वाश्रम के बारे में किसी को पूछताछ नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने आप का जीवन समर्पित कर देता है भगवान की सेवा के लिए, भले ही उसने संन्यास न लिया हो, लेकिन पूरा समय जब 24 घंटे भगवान की सेवा में लगाता है, तो कई बार ज्यादातर लोग आके प्रश्न ये पूछते हैं कि आपकी भाषा कौन सी है, आप कौन से प्रांत से हैं, आप इसके पहले क्या करते थे, या आपका इसके पहले क्या नाम था, कि आपकी पहले शादी हुई थी क्या, आप क्यों इसमें आए, तो इस प्रकार से प्रश्न करते हैं लोग। लेकिन ऐसे पूर्वाश्रम के बारे में प्रश्न नहीं करने चाहिए। प्रश्न करने हैं तो केवल भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में प्रश्न करने चाहिए। हाँ, अभी हम प्रभुपाद जी के पूर्वाश्रम के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत के सारा जीवन जो है वो एक लीला मानना चाहिए, वो साधारण नहीं है। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी कहा था कि अभी आगे चल के एक सेनापति भक्त आने वाले हैं जो चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी को सफल करेंगे, पूर्व बनाएंगे। तो प्रभुपाद जी वो सेनापति भक्त हैं, कोई साधारण भक्त नहीं है। इसलिए इनके जीवन चरित्र को पढ़कर हमारा हृदय जो है वो भी शुद्ध हो जाता है। तो यहां पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने संन्यास लेने के बाद प्रचार करना शुरू किया, लेकिन फिर भी उनके जो पत्रिका छापने का जो कार्य था वो अधूरा रह गया, क्योंकि धन या लक्ष्मी की कमी थी। तो आगे पढ़ते हैं कि क्या समस्या थी प्रभुपाद जी की। वे लिखना चाहते थे और अपने लिखे हुए को प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। वे भगवान के संदेश को प्रसारित करना चाहते लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, है ना। समस्या तो कलयुग में यही है, हरि कथा कोई सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको बोले कि सिनेमा की बात है या कोई राजनीति की बात है, खेलकूद की बात है, तो लोग सुनने के लिए बहुत तैयार हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं बिल्कुल। लेकिन हरि कथा की बात करिए तो लोगों के हृदय में वो रुचि नहीं होती है। ये भी कलयुग का एक लक्षण है। उनके स्वामी हो जाने से इन चीजों में कोई अंतर नहीं आया था। ऐसा नहीं होता हुआ था कि लोग सम्मान तो दे रहे थे थोड़ी बहुत, लेकिन हरि कथा सुनने के लिए नहीं आते थे। इसलिए हम देखते हैं हमारे भक्तों के अंदर भी यही कभी कभी समस्या हो जाती है। कहते हैं प्रभु जी, स्वामी जी, कैसे आप अभी लेकिन जब कहेंगे कि माला कितने हो रहे हैं, नहीं प्रभु जी, नहीं स्वामी जी, माला तो क्या है कि ये है, ये समस्या है, वो समस्या है, सत्संग में क्यों नहीं आते। हाँ आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन अभी थोड़ी समस्याएं हैं। तो सम्मान तो देते हैं, लेकिन जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। जो उनको बताया जाता है कि आप भगवान का नाम लीजिए, माला कीजिए, आप सत्संग में आइए, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़िए, एकादशी के व्रत का पालन कीजिए, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो सम्मान तो देते हैं, लेकिन हरि कथा सुनने की इच्छा जो है वो हृदय में जागृत नहीं होती है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी को भी यह समस्या का सामना करना पड़ा। जब एक पुस्तकालय अध्यक्ष ने भक्ति विदान स्वामी को सलाह दी कि वे पुस्तकें लिखें क्योंकि वे स्थायी होती हैं, जबकि समाचार पत्र पढ़ने के बाद फेंक दिए जाते हैं, तब उन्हें लगा कि इस व्यक्ति के माध्यम से उनके आध्यात्मिक गुरु ही बोल रहे हैं। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने भी जिसे बैक टू गॉडहेड पसंद थी, यही बात कही। भक्ति विदान स्वामी को प्रतीत हुआ कि उनके आध्यात्मिक गुरु यह सब उनके लिए उद्घाटित कर रहे हैं। अपने आध्यात्मिक गुरु के अधीनस्थ सेवक के रूप में वे सदा उनकी इच्छाओं के विषय में सोचा करते थे और बदले में गुरु के आशीर्वचन और उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की अनुभूति उन्हें होती रहती थी। श्रील भक्ति सिद्धांत के विश्वस्त संपर्क की भावना उनमें जितनी अधिक अनुभूत होती थी, उतनी ही अधिक वे पुस्तकें लिखने की प्रेरणा अनुभव करने लगे। गुरु या वैष्णव की उपस्थिति दो तरह की होती है। गुरु का संग, एक को कहते हैं वपुः और दूसरे को कहते हैं वाणी। जब गुरु या वैष्णव साक्षात हमारे संग में होते हैं तो उसको कहते हैं वपुः, यानी उनका साक्षात जो शरीर है वो हमारे संग में है। वपुः मतलब शरीर, और वाणी मतलब जो वो बोल रहे हैं, उनका संदेश। तो वपुः या वाणी दोनों से हम गुरु या वैष्णव का संग कर सकते हैं। वपुः जो है वो बहुत कम हो सकता है, बहुत कम समय तक गुरु के साथ में हम बैठकर संग कर सकते हैं, क्योंकि गुरु इधर उधर जाते हैं प्रचार के लिए, उनको बहुत सारे कार्य रहते हैं, बहुत सारे शिष्य रहते हैं, और जैसे प्रचार की संस्था में उनको इतने सारे सेवा रहती है कि एक जगह वो ज्यादा समय रह नहीं पाते हैं। और फिर एक न एक दिन हरेक वैष्णव को, हरेक व्यक्ति को यह संसार छोड़कर तो जाना होगा, इसलिए वपुः जो है वो बहुत कम समय तक मिल सकता है। लेकिन वाणी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले हमें वपुः मिले या न मिले, प्रयत्न तो करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये संभव नहीं होता है। तो चाहे हमें वपुः मिले या न मिले, वाणी का संग तो हमेशा हमें करना चाहिए। और जब वाणी का संग करते हैं तो हम हमारे जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। जो शिष्य केवल वपुः पर निर्भर होता है वो इतनी जल्दी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। लेकिन जो भक्त वाणी को ज्यादा जोर देता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। ये बताया जाता है कि प्रभुपाद जी केवल 10 या 12 बार अपने गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत से संग कर पाए, केवल 10-12 बार देखिए। लेकिन फिर भी प्रभुपाद कहा करते थे, मुझे ऐसा एक क्षण भी महसूस नहीं हुआ है कि मेरे गुरु महाराज मेरे से दूर हैं, क्योंकि उनकी वाणी जो है, उनकी आज्ञा, उनका आदेश, उनका उपदेश सदैव मेरे हृदय में है। इसलिए उनसे मैं कभी भी ये नहीं समझता हूं कि वो मेरे से दूर है, हमेशा वो मेरे हृदय में है। तो ये है वाणी। और इसलिए हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने जब सुना कि 2-3 व्यक्तियों ने कहा कि आप अभी ये पत्रिका छापना ये ठीक है, लेकिन लोग इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, पत्रिका पढ़ देते हैं, जैसे अखबार को साइड में रख देते हैं, उसी प्रकार से पत्रिका को भी इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप पुस्तक छापेंगे तो पुस्तक को इधर उधर रखने में लोग हिचकिचाते हैं, कम से कम अगर पढ़ेंगे भी नहीं तो अपने बुकशेल्फ में रख देते हैं ताकि दूसरे लोग आके उसको देख सकें कि मेरे घर में इतने बड़े बड़े आध्यात्मिक जो विषय के बारे में पुस्तक हैं, तो भगवद गीता जैसे है वैसे रख देते हैं। तो कम से कम रखते तो हैं, सम्मान करते हैं। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि ये जो ग्रंथ हैं ये एक टाइम बॉम्ब के समान है, कब इनका विस्फोट होगा लोगों के हृदय में वो कह नहीं सकते। तो जब प्रभुपाद जी ने बात सुनी तो उनको तुरंत मन में विचार आया कि मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं, ये उनको साक्षात्कार हुआ। और तुरंत उन्होंने देखा कि हाँ शायद कृष्ण भी यही चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ने मुझे यही बात कही है। तो भक्त वास्तव में बहुत चतुर होता है, वो जानता है कि कब गुरु महाराज बोल रहे हैं, कब कृष्ण बोल रहे हैं और कब नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें बहुत सारे चीजें कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सारे लोग आके हमें कहे कि अरे ये जाप क्या है छोड़ दो, ये भक्ति क्या है छोड़ दो, अगर बहुत सारे लोग हमें कहें और हम सोचें कि कृष्ण हमसे बोल रहे हैं कि जाप करना छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। लेकिन और कोई बात जो हमें भक्ति में आगे बढ़ा सकती है, अगर बहुत सारे भक्तों से या अभक्तों से भी हम बात सुने और ये बात से अगर हमारी भक्ति में प्रगति हो सके तो हमें जानना चाहिए कि कृष्ण इनके माध्यम से बोल रहे हैं। कृष्ण किसी को भी एक निमित्त बनाकर हमसे बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक परम वैष्णव के माध्यम से ही कृष्ण बोले। हाँ परम वैष्णव के माध्यम से तो बोलते हैं ही, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभक्त के माध्यम से कृष्ण बोल सकते हैं। जैसे कभी कभी हर एक भक्त को अनुभव हो सकता है कि हम कभी बाहर जाते हैं, ट्रेन में, रिक्शा में, बस में, इधर उधर जाते हैं, कभी कभी गुस्सा करते हैं हम किसी से, हो सकता है बुरा व्यवहार कर दे अभक्त से, और फिर अभक्त जो है वो फट करके हमें बोल दे, यही आपको मंदिर में सिखाते हैं क्या, यही आपको भक्त का व्यवहार होना चाहिए क्या? तो हमें तुरंत लगता है अरे ये कौन होता है बोलने वाला। लेकिन हमें जानना चाहिए कि हाँ कृष्ण बोल रहे हैं इनके माध्यम से, भले ये सिगरेट पीने वाला हो, शायद 4 नियमों का को तोड़ने वाला हो, लेकिन जो बोल रहा है वो सही है। तो हमारे अहंकार को कम करने के लिए इसलिए कृष्ण इसके माध्यम से बोल रहे हैं, स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वही व्यक्ति अगर कहे कि ये जाप आप क्या कर रहे हो छोड़ो, तो हमें मानना चाहिए कि ये माया बोल रही है, ये कृष्ण ही बोल रहे हैं। तो कृष्ण कब बोलते हैं, कृष्ण कब नहीं बोलते हैं, किसके माध्यम से बोलते हैं, ये समझने के लिए भी हमें सिंसियरिटी चाहिए, हमें बहुत सीरियस होना चाहिए भक्ति में। तो प्रभुपाद जी बहुत सिंसियर थे अपने भक्ति में, इसलिए वो तुरंत पहचान पाए कि जब दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अभी पत्रिका छापना बंद करो या बंद नहीं करो तो ठीक है, लेकिन पुस्तक तो कम से कम छापना आरंभ करो, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत पहचान लिया कि हाँ ये तो कृष्ण बोल रहे हैं। उनका ध्यान श्रीमद् भागवत पर गया क्योंकि वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आधिकारिक वैष्णव धर्म ग्रंथ था। यद्यपि भगवद गीता संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार तत्व थी, पर वह संक्षेप में वर्णित थी, जबकि श्रीमद् भागवत का रूप विस्तृत था और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा भक्ति विनोद ठाकुर दोनों ने भागवत पर बंगला में टीकाएं लिखी थीं। सच तो ये है कि अतीत में वैष्णव आचार्यों में से अधिकतर श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिख चुके थे। स्वयं भगवान चैतन्य ने श्रीमद् भागवत की शुद्ध वैदिक साहित्य के रूप में संस्कृति की थी। इस ग्रंथ को अंग्रेजी अनुवाद और टीका किसी दिन अखिल विश्व का हृदय परिवर्तन कर सकती हैं। और यदि वे थोड़े से भी पुस्तकें प्रकाशित कर सकें तो उनके प्रचार कार्य में अभिवृद्धि होगी। वे विश्वास के साथ विदेश जा सकते थे और वहां लोगों के सामने उन्हें खाली हाथ नहीं उपस्थित होना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि कौन से ग्रंथ का अनुवाद करना चाहिए। बहुत सोचे। वैसे भगवत गीता का तो उन्होंने किया ही था, लेकिन गीता के अनुवाद के पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत के एक या दो स्कंद किए, क्योंकि वे सोच रहे थे कि हमारे वैष्णव आचार्यों ने सबने श्रीमद् भागवत के ऊपर ज्यादातर टीका लिखा है, किया है। वैसे गीता के ऊपर भी तो किया है, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी किया है गीता के ऊपर टीका, लेकिन ज्यादा ध्यान जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने भी और हमारे आचार्यों ने भी श्रीमद् भागवत पर किया है। इसलिए श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरह नापरह, कि चैतन्य महाप्रभु का मत है कि ये श्रीमद् भागवत जो है सबसे ऊंचा प्रमाण है, ये अमलम पुराणम है, इसमें कोई मल नहीं है। तो सबसे ऊंचा प्रमाण श्रीमद् भागवत है। जहां श्रीमद् भगवत गीता का अंत होता है, श्रीमद् भागवत वहां से उसकी शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवत गीता का अंत है कि हमें भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना चाहिए, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, लेकिन श्रीमद् भागवत की शुरुआत शरणागति से होती है। तो इसलिए प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत का अनुवाद करके अंग्रेजी में वो सारे विश्व भर में इसको फैलाएं। एक दिन राधा दामोदर मंदिर के मालिक स्वामी गौरचंद गोस्वामी भक्ति वेदांत स्वामी के पास गए और उन्हें राधा दामोदर मंदिर में रहने के लिए आमंत्रित किया। जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी का शाश्वत अधिवास होने के कारण वह उनके लेखन और अनुवाद कार्य के लिए अधिक उपयुक्त स्थान होगा। भक्ति वेदांत स्वामी को रुचि हो गई। उन्होंने वहां नित्य जाना कभी बंद नहीं किया था और भगवान चैतन्य के आंदोलन के महान नेताओं जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी की समाधियों के दर्शन से उन्हें बराबर प्रेरणा मिलती थी। लेकिन जब वे उन दो कमरों को देखने गए जो उन्हें मिलने वाले थे, तो उन्होंने उन्हें खराब दशा में पाया। वर्षों से उनकी मरम्मत नहीं हुई थी, न उनमें कोई रहा था, लेकिन वे अवसर को खोना नहीं चाहते थे। अतः 5 रुपए महीने पर उन्होंने उन्हें ले लिया। उन्होंने हिसाब लगाया कि 500 रुपए से कुछ अधिक में कमरों में बिजली लग जाएगी और अच्छी तरह उनकी मरम्मत हो जाएगी। जब यह सब हो जाएगा तो वे उनमें रहने लगेंगे। देखिए भगवान का कितना सुंदर आयोजन था प्रभुपाद जी के लिए कि जिस मंदिर में रूप गोस्वामी रहा करते थे, जीव गोस्वामी रहा करते थे, इसकी स्थापना रूप गोस्वामी ने की और फिर रूप गोस्वामी ने राधा दामोदर जी की ऐश विग्रह की सेवा का जो अवसर है वो जीव गोस्वामी को दिया। वही जगह जहां उन दोनों महान आचार्यों की समाधि थी वहां रहने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया। कितने भाग्यशाली थे प्रभुपाद जी। वहां वास्तव में वैष्णव भक्तों के वैष्णव आचार्यों के समाधियों के पास में जाकर हरेक भक्त को प्रार्थना करनी चाहिए। वहां से बहुत शक्ति मिल सकती है। वास्तव में वृंदावन में बहुत सारे हमारे वैष्णव आचार्यों की समाधियां हैं, तो जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो अवश्य हमें ये वैष्णव आचार्यों के समाधियों के पास में जाकर दर्शन करना चाहिए, वहां थोड़े समय के लिए बैठना चाहिए, उन वैष्णव आचार्यों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी आपकी कृपा दीजिए, हमें आध्यात्मिक शक्ति दीजिए कि हम भी ये भक्ति मार्ग में तेजी से आगे बढ़ सकें, ये प्रचार के आंदोलन में हम भी शामिल हो सकें, हमारे हृदय से ये सब मल जो है, अनर्थ जो है, वो खत्म हो जाए। ऐसे समाधियों में जाके प्रार्थना करने से बहुत शक्ति हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वैष्णव आचार्य सदैव रहते हैं, सदैव निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि वैष्णव आचार्य कभी चले जाते हैं, वैष्णव आचार्य कभी चले नहीं जाते हैं, वैष्णव आचार्य अमर हैं, और जहां उनकी समाधि है वो वहां पर हमेशा निवास करते हैं। इसलिए वो स्थान में जब हम जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, या केवल अगर वहां जाकर हम जाप भी करें या कीर्तन भी करें, तो उस कार्य से हमें बहुत ज्यादा शक्ति मिल सकती है। इसलिए प्रभुपाद जी जब वहां वृंदावन में रहा करते थे तो हर रोज राधा दामोदर मंदिर में जाया करते थे और वहां पर सारे आचार्यों की समाधियों में जाके वो दर्शन किया करते थे, और विशेषतः जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी के समाधियों में जाते थे। और अब उनको यह सुअवसर प्राप्त हुआ कि उसी मंदिर में दो कमरे में वो रहे हैं, लेकिन जब गए तो क्या देखा कि कमरों की बुरी हालत थी। कमरों का किराया क्या था? 5 रुपए। आजकल क्या मिल सकता है 5 रुपए में? और वो सोच रहे थे कि 500 रुपए में केवल अच्छी तरह से इनका मरम्मत किया जाए और बिजली का कनेक्शन भी आ जाए। 500 रुपए में आजकल कौन से कमरे की मरम्मत कर सकते हैं आप? नहीं हो सकता। तो खैर प्रभुपाद जी ने सोचा कि ये अच्छा अवसर है, चलो उसको स्वीकार कर ही लेना चाहिए। भक्ति विधान स्वामी को आमंत्रण शुभ लगा। वहां रहते हुए वे श्रीमद् भागवत के अंग्रेजी अनुवाद की योजना में सहायता प्राप्त कर सकेंगे। वृंदावन के सभी मंदिरों में से राधा दामोदर मंदिर में 6 गोस्वामियों और उनके शिष्यों के मौलिक लेखों का सबसे बड़ा संग्रह था। वहां 2000 से अधिक पृथक पांडुलिपियां थीं। बहुत सी पांडुलिपियां 300 और कुछ 400 वर्ष भी पुरानी थीं। भक्ति विधान स्वामी प्रतीक्षा करने लगे कि किसी दिन वहां श्री रूप गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी के सहचर्य में रहने का अवसर मिलेगा। अभी वे वंशी गोपाल मंदिर में रहेंगे और जो कुछ धन उनके हाथ लगेगा उससे राधा दामोदर मंदिर के कमरों की मरम्मत कराएंगे। तो यहां बताया जाता है कि राधा दामोदर मंदिर में बहुत सारी बड़ी लाइब्रेरी थी हमारे वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों की, अर्थात ये जो जगह है सबसे धनी जगह था, सबसे बड़ा धन जो है वो यहां पड़ा था। वैष्णव आचार्यों के ग्रंथ जो होते हैं वो सबसे बड़े धन होते हैं। जब नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य जो वैष्णव आचार्यों के ग्रंथ को लेकर जीव गोस्वामी के आदेश के अनुसार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे बंगाल में, पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी निकली थी, तो उस समय वो चोरी हो गई। राजा बिरंबीर जो वहां डाकुओं के राजा थे और उनके डाकुओं ने चोरी कर दी, सोचा कि इतना बड़ा धन है, ये कुछ धन होगा, ये सब पेटियों में बंद है, कुछ धन होगा, चोरी कर लिया। धन तो अवश्य था लेकिन वो उनको उस धन को पहचान नहीं पाए। वो राजा सोच रहे थे कि धन मतलब क्या है, सोना चांदी पैसा हीरे मोती, ये सोच रहे थे कि धन है, लेकिन जो धन उन पेटियों में था उसको पहचान नहीं पाए। वास्तव में ये जो धन है वैष्णव आचार्यों के ग्रंथ, सोना चांदी से कहीं ज्यादा कीमती है, कहीं ज्यादा मूल्यवान है। ये इसकी कीमत की हम कल्पना नहीं कर सकते कितनी ज्यादा मूल्यवान है ये। लेकिन राजा बिरहंदुर केवल सोना चांदी से की तुलना कर रहे थे। लेकिन खैर बाद में नरोत्तम दास ठाकुर को फिर ये ग्रंथ वापस मिल गए और राजा बिरहंदुर उनके शिष्य भी बन गए। तो सबसे बड़ा धन प्रभुपाद जी सोच रहे हैं कि राधा दामोदर, वो पैसे एकत्र करते गए और धीरे 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 से सोच रहे थे कि जब 500 रुपए के करीब हो जाएंगे तो फिर ये सारे कमरों की मरम्मत कर देंगे और फिर वहां रहने शुरू कर देंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि प्रचारक को नगरों में जाना चाहिए और किसी तीर्थ स्थान में के एकांत में वास नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि हमारी संस्था प्रचारकों की संस्था है। इसका मतलब ये नहीं है कि भजन नहीं करना है। दो प्रकार के वैष्णव होते हैं, एक को कहते हैं भजनानंदी और दूसरे हैं गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी जो है वो बाहर जाके प्रचार करते हैं, वैष्णव हरि कथा करते हैं, लेकिन जो भी शहरों में गांव में इधर उधर लोग रहते हैं उनको कृष्ण के बारे में वो संदेश देते हैं और उनका उद्धार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भजनानंदी है, भजन का आनंद अपने आप लिया लेते रहते हैं, कोई सुनसान जगह में जाते हैं, धाम में रहते हैं, किधर इधर उधर रहकर अकेले में अपने भजन करते रहते हैं। दोनों वैष्णव महान है, हर एक वैष्णव महान है, तो चाहे वो भजनानंदी हो गोष्ठानंदी हो, दोनों को हमें सम्मान देना चाहिए। लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर, इनका भाव ये था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पूरी हो जाए कि हर जगह हर गांव में पृथ्वी ते जाते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो भी मोर नाम, ये भविष्यवाणी को कैसे पूरा करे। अगर हर एक व्यक्ति जो है वो अपने धाम में जाए, अपने घर में बैठ के भजन करता रहे केवल और प्रचार नहीं करे, तो संसार का उद्धार कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये सिद्धांत था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कि हरेक व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए। इसी विचार से भक्ति वेदांत स्वामी दिल्ली जाते रहे, यद्यपि उनके लिए वह नरक के समान था और वहां उनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था। इसलिए हम सब बंबई भी रहते हैं ना, ये तो दिल्ली से ज्यादा बड़ा नरक है। दिल्ली बंबई कलकत्ता इनमें सब स्पर्धा चल रहा है कौन सबसे ज्यादा जल्दी और भी नरकी अवस्था बना सकते हैं। कितना नरक जैसा, आप जाके देखिए वो रेलगाड़ियों में क्या अवस्था है, वो आप सांस भी नहीं ले सकते, इतना आवाज है, लोग झगड़े करते हैं और हवा भी इतना दूषित है, हर चीज देखिए तो नरक के समान है बिल्कुल। रेलवे स्टेशन पे जाके लोग इधर उधर पड़े हुए हैं, कोई गांजा पी रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सोच रहे थे कि नरक तो यहां है, नरक में जाने की क्या आवश्यकता है जब यहां इतना सब नरक में ही लोग जी रहे हैं। खाने के लिए पैसा नहीं है लेकिन वो कुछ करके वो क्या पी रहे हैं, क्या वो गांजा ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, खाने पीने का पैसा नहीं, तो इससे बड़ा नरक क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी भगवान के भक्त यहां रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रचार यहां करना है, यहां लोगों इस कृष्ण भक्ति की आवश्यकता है लोगों को, इसलिए यहां भक्त लोग रहते हैं। नहीं तो भक्तों को यहां रहने की क्या जरूरत है, सब लोग मायापुर वृंदावन इधर उधर जाके धामों में आराम से रहकर दो टाइम की दाल रोटी खा के आराम से रहते थे, क्या जरूरत थी यहां के सरदर लेना अपने ऊपर और मारपीट करना और उसमें धक्का मुक्की करना रेलगाड़ी में जाकर, क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी ये तपस्या है भक्त के लिए, क्योंकि भक्त बड़ा कृपालु होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बड़े कृपालु थे, उन्होंने कहा कि मेरे गुरु महाराज चाहते थे कि आप यहां रहो और प्रचार करो। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा कि कलकत्ता शहर जो है हालांकि नरक के समान है लेकिन ये मेरी ऋण भूमि है, युद्ध का स्थान है, ये माया के प्रति हम विरुद्ध हम युद्ध कर रहे हैं और इसलिए युद्ध करते करते ही हम यहां हमारे प्राण को त्यागेंगे। जैसे क्षत्रिय होता है जो युद्ध करता है, तो अगर युद्ध में जाता है चाहे वो जीत, दो से चॉइस होते हैं, चाहे वो जीत के वापस आए या अगर हार जाए तो वही मर जाए, लेकिन लौट के आए लेकिन हार के आए ऐसा नहीं है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते थे कि युद्ध को जीतना तब हम जीत पाएंगे जब हरेक व्यक्ति को भक्त बना पाएंगे। अगर हरेक व्यक्ति को भक्त नहीं बना पाए इसका मतलब है कि अभी तक पूरा विजय प्राप्त हुआ नहीं है, तो फिर हम ये हमारी ऋणभूमि को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत ने कहा कि मैं कलकत्ता शहर में जो मेरी ऋणभूमि है मैं यही मेरा प्राण त्याग दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वृंदावन जाकर प्राण त्यागूंगा, यही ये मेरी युद्ध भूमि है यही मैं प्राण त्याग। वास्तव में बाग बाजार में गौड़ी मठ का मंदिर जो है उसमें उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। जानते थे कि यहां प्रचार की आवश्यकता है। प्रायः व्यवसायी लोग उन्हें अपने यहां ठहरा लेते क्योंकि वे उस भारतीय संस्कृति के कारण अनुग्रहित अनुभव करते थे जो यह कहती है कि यदि कोई भला आदमी भगवान की कृपा का भजन का भाजन बनना चाहता है तो उसे साधुओं को शरण देनी चाहिए, उन्हें भोजन और रहने का स्थान देना चाहिए। लेकिन ऐसे साधुओं के दृष्टिकोण हिंदुत्व की भावुकता पर आधारित था और उनका आदर सत्कार कृत्रिम होता था। व्यवसायी वर्ग भक्ति वेदांत स्वामी के कार्य की यही परख नहीं कर सकता था और भक्ति वेदांत स्वामी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी पर अपने को लादते। मतलब लोग कभी कभी सोचते हैं कि साधुओं का सम्मान करना ये एक शुभ कार्य है, ये हमें अच्छा हिंदू बनना चाहिए तो हमें साधुओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन हिंदू बनने से हमें करना क्या है वो उनको ज्ञान नहीं था कि वास्तव में हिंदू कौन है जो भगवद गीता श्रीमद भागवत का पालन करता है, जो शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करता है, ये सच्चा हिंदू है। और सच्चा मुसलमान भी कौन है, वो वही चीज करता है। सच्चा ईसाई कौन है, वो वही चीज करता है। तो सच्चे धर्म का पालन करने वाला वो है जो भगवान का भक्त बने, शुद्ध भक्त बने। तब उन्होंने राधा प्रेस के मैनेजर मिस्टर हितशरण शर्मा से बात की। मिस्टर शर्मा लीग ऑफ डिवोटीज के लिए पहले इश्तिहार और लेखन सामग्री छाप चुके थे और भक्ति वेदांत स्वामी किसी अवसर पर उनके घर में ठहर चुके थे। मिस्टर शर्मा ने भक्ति वेदांत स्वामी का परिचय पंडित श्री कृष्ण शर्मा के कराया जो जातिगत ब्राह्मण और सक्रिय धार्मिक पुरुष थे और दिल्ली की 100 वर्ष पुरानी धार्मिक संस्था श्री नवल प्रेम सभा के सचिव थे। भक्ति वेदांत स्वामी के साहित्य कार्यों में प्रति सहानुभूति के प्रेरित होकर कृष्ण पंडित ने उन्हें पुरानी दिल्ली के छिट्टीवाड़ा के पास राधा कृष्ण मंदिर में एक कमरा रहने के लिए दिया। जब भक्ति वेदांत स्वामी को दिल्ली में एक स्थायी कार्यालय मिल गया तो देखते हैं कि जब कृष्ण के भक्त प्रचार के कार्य में आगे जाते हैं कहीं न कहीं कोई न कोई भक्त अवश्य, कोई न कोई व्यक्ति अवश्य मिल जाता है जो उनकी सहायता करता है। कृष्ण उस भक्त के हृदय को देखकर किसी न किसी व्यक्ति को भेज देते हैं उनकी सहायता करने के लिए और उस व्यक्ति जिसको कृष्ण ने भेजा है वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि जब भी थोड़े से भक्त, कोई भी व्यक्ति भक्तों को अप्रिशिएट करते हैं या सोचते हैं कि ये भक्त बड़े अच्छे हैं, उनकी भक्ति की शुरुआत होती है। आदर श्रद्धा तथा साधु संगत है भजन क्रिया सात अनर्थ निवृत्ति ये भक्ति के आगे बढ़ने का क्रम है। लेकिन सबसे पहला क्या है? आदेव श्रद्धा। सबसे पहली बात यह है कि हमें थोड़ी बहुत इच्छा होनी चाहिए, थोड़ी बहुत श्रद्धा होनी चाहिए भक्ति मार्ग में। ये इच्छा होनी चाहिए कि भक्तों का संग हमें मिले। प्रभुपाद जी ये भी बताया करते थे कि अगर थोड़ी बहुत हम भक्तों के बारे में हम अप्रिशिएट करें कि ये भक्त कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर कीर्तन करते हैं, कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, एक प्रसाद कितना अच्छा है, ये भगवान की अर्च विग्रह कितने सुंदर हैं, इन्होंने श्रृंगार कितनी अच्छी तरह से किया है, ऐसे छोटी सी बात भी अगर हम उनके अप्रिशिएट करते हैं तो हमारे भक्ति की शुरुआत हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी के लिए ऐसे लोग मिलते गए, हर एक कदम पे कोई न कोई मिलते गया। मथुरा से चलकर गाड़ी चांदनी चौक के निकट पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुंचती थी। चांदनी चौक की चौड़ी सड़क पर भीड़ की एक नदी जैसी उमड़ती रहती। रिक्शाओं से सड़क भरी रहती। एक दूसरे के अगल बगल कभी कभी एक दर्जन तक साइकिल सवार साथ भागते होते। कुछ कम संख्या में ऑटो रिक्शा भी चलते रहते। भारी ठेलों को खींचते हुए आदमी पैदल दौड़ते रहते। कभी कभी भारी बोझों से लदे गधों, भैंसों, ऊंटों और हाथियों को हाथ में कोड़े लिए हुए आदमी हांकते होते। तो दिल्ली की जो स्थिति थी उस समय, उसके बारे में वर्णन है। आज तो इससे 20 गुना 100 गुना ज्यादा खराब है हालत दिल्ली में। आप पुराने दिल्ली स्टेशन में जाएंगे तो देखेंगे वहां सांस नहीं ले पाएंगे आप। वास्तव में आप जाएंगे तो आंख जलने लगेंगे, इतना प्रदूषण है। हर एक कण धुआं 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 हर जगह। यही हमारी उन्नति है, यही हमारी प्रगति है। लेकिन भक्ति में लोगों की रुचि कम होती जा रही है। ऐसी भीड़ से भरे चांदनी चौक से होकर भक्ति वेदांत स्वामी लाल किला से आगे छिप्पीवाड़ा के लिए छोटा रास्ता अपनाते। गौरी शंकर मंदिर को अपने बाएं छोड़ते हुए वे विशाल जमा मस्जिद से आगे एक गली में से निकलते। छिप्पीवाड़ा से निकट सड़क और सक्रिय हो जाती। 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक बंटवारा होने के पहले छिप्पीवाड़ा मुस्लिम बस्ती थी। बाद में वहां हजारों पंजाबी हिंदू बस गए। छिप्पीवाड़ा हिंदू मुसलमानों की एक मिलीजुली बस्ती बन गई। इतनी घनी बस्ती कि उसकी सड़कों पर मोटर गाड़ियों का जाना मना था। केवल बैलगाड़ियां और रिक्शे ही उसकी संकरी भीड़ भरी गलियों में प्रवेश कर सकते थे और किसी किसी क्षेत्र में रिक्शों को भी जाने से रोकने के लिए लोहे व खंभे गाड़ दिए गए थे। सड़कों और गलियों में क्रय निक्रय करने वालों और चलने वालों कामगारों को का ऐसा घना जमघट होता कि उनके बीच से किसी साइकिल वाले को भी निकल जाना गड़बड़ पैदा कर देता था। गलियां इतनी पास पास और तंग थीं कि उसकी ऊपरी मंजिलों के छज्जों ने कुछ ईंचों का फासला रह गया था, जैसे उसके सड़क से ऊपर छत सी बन गई थी। उससे नीच सड़क पर चलने वालों की आकाश का संकरा खंड भर दिखाई पड़ता था। निजी बाड़ों, दुकानों, गलियों और सार्वजनिक सड़कों का अंतर मिट सा गया था। यद्यपि अधिकतर दुकानों पर साइन बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी में लगे थे, कुछ दुकानों के साइन बोर्ड घुमावदार अरबी अक्षरों में भी थे और काले कपड़ों से पर्दे वाली स्त्रियां आम तौर से दिखाई देती थीं। शहरी जीवन के ऐसे घने भाग में कृष्ण पंडित के राधा कृष्ण मंदिर का संकरा प्रवेश द्वार था, जिस पर गणेश देवता का फलक लगा था और जिसके सादे मेहराबदार दरवाजे से ठीक ऊपर घोंसला बनाने वाले कबूतरों की एक पंक्ति बैठी थी। देखिए कितने विस्तार में सत्स्वरूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, हमारे पढ़ने में थोड़े गड़बड़ हो रही है, इतनी आदत नहीं है हिंदी पढ़ने की। तो कितने विस्तार में सत्स्वरूप दास गोस्वामी समझा रहे हैं कि क्या हालत थी। ये सब चीजें जब हम पढ़ते हैं तो हम जान सकते हैं कि कैसे परिस्थितियों में प्रभुपाद जी वहां प्रचार किया करते थे। अभी हमारे लिए सारी सुविधाएं हैं, मंदिर है और किताबें छप गई हैं और सब कुछ तैयार है हमारे लिए, इतने सारे भक्तों का संग है, सब कुछ तैयार करके रखा है भगवान ने हमारे लिए। लेकिन उस जमाने में प्रभुपाद जी के लिए कोई चीज नहीं थी। कैसे कैसे परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ता था, कैसे कैसे गलियों में इधर उधर उनको जाना पड़ता था, रहने का ठिकाना नहीं, कहां कैसे छापेंगे, पैसे का ठिकाना नहीं। तो लेकिन ऐसे परिस्थितियों में गुजरते हुए भी प्रभुपाद जी अटल रहे अपने कार्य में और भक्ति मात्र प्रचार के उद्देश्य से कभी हटे नहीं। देखिए कैसे जगह में गए थे। अभी हमारे मंदिर तो इतने अच्छे अच्छे जगह में रहते हैं ना, देखिए मीरा रोड में कितना अच्छा जगह है, सब शांत है और यहाँ सब सड़कें अच्छी हैं और सब जगह सब शांत है, अच्छा जगह है। हमारे मंदिर ऐसे ही है सब जगह, लेकिन प्रभुपाद कैसे कैसे जगह में जाकर प्रचार किया करते थे। मंदिर और उसमें रहने वाले परिवारों का वातावरण कुछ कुछ पड़ोस की कोठरियों से मिलता जुलता था। यद्यपि मंदिर का कमरा अंधेरा था किंतु आसन पर विराजमान राधा कृष्ण के शिव विग्रह भली भांति आलोकित थे। राधा रानी का रंग गेहुआ था, कृष्ण श्याम वर्ण के संगमरमर के और लगभग 2 फुट लंबे थे। ताजे घिसे चंदन की बिंदियों से उनका श्रृंगार किया गया था और माथे पर पीले चंदन का लेप था। दोनों शिव विग्रह रेशम के परिधान से ढके थे। शिव विग्रहों के कमरे के ठीक ऊपर का कमरा अतिथिशाला था, भक्तिवेदांत स्वामी का कमरा। नग्न सीमेंट की दीवारें और फर्श के बीच में से ऊपर उठा हुआ एक 3 फुट का कंक्रीट से बना सर्पिल पिरामिड था, जो इस बात की सूचना देता था कि शिव विग्रह ठीक उसके नीचे अवस्थित है। वहां के राधा कृष्ण मंदिर का वर्णन है, आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं। भक्तिवेदांत स्वामी को शीघ्र मालूम हो गया कि उनका कमरा एकांत में नहीं था, वरन उसके अगल बगल अन्य आवासीय कमरे भी थे। दरवाजे के बाहर धातु की एक जाली थी, जो वंशी गोपाल जी मंदिर और केशव जी मठ की जालियों से भी छोटी थी और जिससे नीचे मंदिर का छोटा सा आंगन दिखाई देता था। छत पर से कठिनाई से शायद ही कोई वृक्ष दिखाई पड़ता था। आसपास की कोठरियों की छतें एक दूसरे से इतनी सटी थीं कि ऐसा लगता था कि कोई चाहे तो एक छत से दूसरी छत पर से होता हुआ विशाल जमा मस्जिद तक पहुंच सकता है। मस्जिद के बड़े बड़े 3 गुंबद जिनके अगल बगल उनसे भी ऊंची मीनारें थीं, आम मकानों से ऊंची दिखाई देते थे। कबूतरों के झुंड उड़कर आते और उन गुंबदों पर बैठते या आकाश में गोलाई में उड़ते। तो हम देखते हैं कि इतनी भीड़ थी वहां प्रभुपाद जी ऐसे जगह में जाकर रहते, उनको कमरे में भी कोई प्राइवेसी नहीं थी। ऐसा नहीं कि सुनसान जगह में उनको कमरा मिला, नहीं, बड़ी भीड़ थी वहां पर। और ऐसे यह वर्णन है कि एक घर से दूसरे घर, अब छत के ऊपर से एक छत से दूसरे छत तक जा सकते, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार आप वहां से जमा मस्जिद तक जा सकते थे, ऐसा वर्णन है। तो ऐसे परिस्थिति में प्रभुपाद गुजरे। देखिए कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा प्रभुपाद जी को। उनके लिए कोई लाइफ नंबर का गेस्ट हाउस नहीं था जहां जाके वो आराम से रह सकते थे। कहां कहां कैसे कैसे जगह से परिस्थितियों से गुजर के उन्होंने प्रचार का आंदोलन शुरू किया। कोई उनको साथ देने वाला नहीं था। कोई साथ देता है तो थोड़े दिन के लिए, फिर उसको छोड़कर दूसरा आदमी को उनको ढूंढना पड़ता था। इस प्रकार से ऐसे तपस्या उन्होंने किया और आज हमारे लिए सब कुछ तैयार है। इतने सारे सुविधाएं हमारे पास है, इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि तपश्चर्या जो है वो भक्त का धन होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि उनके भक्तों की जो तपस्या है वो वास्तव में उनका सबसे ऊंचा धन है। तो इसलिए ये भी हमें याद रखना है कि जब हम सुविधा की अवस्था में रहते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए कितनी तपस्या की और संसार के लोगों के लिए उन्होंने कितनी तपस्या की, कैसे कैसे परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा। तो थोड़ा बहुत हमको भी कष्ट हो जाए तो इसे हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। भक्त विनोद ठाकुर बताते थे, भक्ति मार्ग में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ये मेरे जो है आनंद है। तो अगर हमें कोई कष्ट भी हो तो हमें आनंद की भावना से इसको स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, श्री श्री राधा गिरिधारे जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की।